जयधवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 20।
ओम नमः सित्तेभ्य ओम नमः सित्तेभ्य ओम नमः सित्तेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं वेदकवेदकवेदकं अवेदकं वेदग्रन्थसंसिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा ओच्चं वेदगमाहियारमं।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ज्ञानवी पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 158 पर आ गए हैं। उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा में अभी पदनिक्षेप का अपना प्रक्रम चल रहा है, उसमें हमने उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और अवस्थान की बात देखी थी। अब जघन्य का प्रकरण शुरू होने जा रहा है। 158 पृष्ठ 158 नीचे से दूसरा पैराग्राफ जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओवर आदेश, यानी यहाँ जघन्य वृद्धि जघन्य हानि की बात चलेगी। ओग से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य वृद्धि किसके होती है, जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला जीव अनंत भाग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टि के उनकी जघन्य वृद्धि होती है। पहले आपने एक बार लिख के लाया था ना अध प्रवृत्त का कुछ अर्थ, ऐसा लगता है तथा उसी के तदनंतर समय में उसका जघन्य अवस्थान होता है। ये कल अपनी इस पर चर्चा चली थी। बहुत जघन्य हानि किसके होती है, जो तदनंतर समय में संयम को प्राप्त होगा की बात है, यानी संयम प्राप्त होने के पूर्व की अवस्था है, ऐसे अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उनकी जघन्य हानि होती है। सम्यक्त्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है, जो अनंत भाग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अधप्रवृत्त सम्यक दृष्टि के उनकी जघन्य वृद्धि होती है। यहाँ भी अधप्रवृत्त शब्द आया। यानी यहाँ संकलेश हो रहे हैं ना, उसके अधप्रवृत्त ने भी नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्या लेना उसको। तथा उसी के तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है। मेरे ख्याल अधप्रवृत्त ने नीचे के सन्मुख ऐसा लेना, पर मिथ्या तो मैं अधप्रवृत्त कैसे लेना। मिलेगा क्या सिद्धांत कोश में, मिलेगा अर्थ। इंडेक्स देखना है कि वो पांचवा भाग है उधर, हाँ उधर ही वो सिल्वर वाला है, वो पांचवा भाग है, उसमें इंडेक्स होगा। क्योंकि ये शब्द बार बार आ रहा है अध प्रवृत्ति की बात। हाँ अध प्रवृत्ति में मिल जाएगा पहले भाग में, वो तथा अध दो छो 439 हाँ वही तो 439 बगू लगे वो उपशम विधान में है वो ये अध प्रवृत्ति नहीं वो तो अध प्रवृत्त मिथ्या दृष्टि अध प्रवृत्त समय दृष्टि अध प्रवृत्त समय मिथ्या तो सब में लिया है नहीं नहीं इसमें अभी दवला में पढ़ने जा रहे हैं हम ये अंतरकरण ये करण में अध प्रवृत्ति वाली बात है यहाँ पर
अध प्रवृत्त संक्रमण में
अध एक मिनट इसमें अमूल इसी में मिलेगा तो मिलेगा पोखो बबो ये स्वस्थान सातिशय में लिया था हमने उस दिन इसमें से पढ़ा था ना अध प्रवृत्त संयम था वो उपशम चारित्र के सन्मुख वेदक समय दृष्टि अनंत अनुबंधी का विसर्जन करके अधन अंतर्मूर्त काल पर्यंत अध प्रवृत्त अप्रमत्त कहलाता है हाँ अब अपने अपने टॉपिक में नहीं हो एक मिनट मुझे ये पफम के पहले तथा तथा कब आता है इसमें कुछ लिखा है क्या मैं देख लेती हूँ तथा तथा ना अध मिला अभी अध देखना है ना अध्यवसाय देवस्थान अध प्रवृत्त संयत अध प्रवृत्त संहिता अध प्रवृत्ति करण करण में लिया अध प्रवृत्ति संक्रमण वो तो हमने जो देखा था अध प्रवृत्ति संक्रमण वाला अध प्रवृत्ति अलग से उसका नहीं बात अलग से बात नहीं चलो हम यहाँ अर्थ निकलेगा जो कुछ पढ़ेंगे ये सिद्धांत को यानी यहाँ अध प्रवृत्त मिथ्या दृष्टि के यानी मिथ्या तो गुणस्थान से निकलने वाला लेना है क्या मिथ्या तो में आने वाला लेना
तो
है कल
तो
हमने नहीं नहीं कल हमने हाँ। मिथ्या तो के बारे में भी देखा था हाँ। अध प्रवृत्त मिथ्या दृष्टि लिखा था वहाँ अब यहाँ सम्यक तो की जघन्य वृद्धि अध प्रवृत्त सम्यक दृष्टि के तो अध प्रवृत्त सम्यक दृष्टि किसको कहना ये फिर प्रश्न आता है आगे पढ़ेंगे तथा उसी के तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है जघन्य हानि किसके होती है जिसने दर्शन मोह की क्षपणा पूरी नहीं की उसमें अभी एक समय अधिक एक आवली काल शेष है ऐसे अन्यतर कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव के उसकी जघन्य हानि होती है यानी जिसके दो समय और आवली बाकी है वो दो समय से एक समय तक आ गया वहां पर उसकी जघन्य हानि हो गई सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अनंत भाग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्यतर अधप्रवृत्त सम्यक मिथ्या दृष्टि के, उसकी जघन्य वृद्धि होती है तथा उसी के तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है। देखो हानि उत्कृष्ट में सर्वत्र अवस्थान हानि के पश्चात लिया है और जघन्य में अवस्थान वृद्धि के पश्चात लिया है। देखो मिथ्यात्व में भी देखा हमने, चौथी लाइन में जघन्य वृद्धि, उसके अनंत समय में जघन्य अवस्थान।
और उत्कृष्ट में हानि के पश्चात ले है ना अवस्थान, उत्कृष्ट में हानि के पश्चात,
उत्कृष्ट अवस्थान उत्कृष्ट हानि के पश्चात लिया था, यहाँ जघन्य अवस्थान जघन्य वृद्धि के पश्चात ले रहे, हर जगह लिया। वैसे सम्यक मिथ्यात्व के देखा ना, उसी के तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होती, जघन्य हानि किसके होती है? जो तदनंतर समय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा की बात है, ऐसे अंतिम समयवर्ती अन्यतर समय मिथ्या दृष्टि के, उसकी जघन्य हानि होती है। यानी दो समय लेना, पहले समय के कंपैरिजन में लास्ट समय में वो आया है तो वहाँ जो हानि है वो जघन्य हानि हुई है। यानी अध प्रवृत्ति ने नीचे की ओर सन्मुख ऐसा ही ले सकते हैं हम इसका। अभी मिथ्यात्व में अध प्रवृत्ति में यानी सम्यक्त्व से छूट कर आया मिथ्यात्व में, मेरे ख्याल से हमने पहले ऐसा देखा था, अध प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि है, या तो उद्वेल ना करेगा या तो फिर सम्यक्त्व तो प्राप्त करने के लिए विशुद्धि बढ़ेगी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना कि आपने पढ़ा है? देखना फिर। यानी वो रेगुलर शब्द शायद होगा अध प्रवृत्त, जैसे हम कहेंगे, क्योंकि अध प्रवृत्त संक्रमण में शब्द आता है, अध प्रवृत्त करण भी एक होता है, और ये ऑर्डिनरी अध प्रवृत्त उन्होंने शब्द लिया होगा ऐसा लगता है। कहीं मिलेगा तो हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। अब अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अनंत भाग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्यतर अधप्रवृत्त सम्यक दृष्टि के, उसकी जघन्य वृद्धि होती है।
ये सभी जगह अधप्रवृत्त लिया है तो ये तो कहाँ पे भी हो सकती है यथा योग्य, जो अनंत भाग वृद्धि वाला।
हाँ, मगर जिस प्रकृति की जहाँ कहाँ पर है, मिथ्या दृष्टि के तो नहीं गए।
नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की ये चौथे गुण स्थान में होगी कि सातवें गुण स्थान में होगी, इतनी जघन्य
अध प्रवृत्ति ने उसके संकलेश की ओर बढ़ने वाला ऐसा कुछ लेना है।
हाँ।
और वो कम से कम अनंत भाग वृद्धि सहित तो चल हाँ। रहा है, इसकी बात है। ये जब कितने भाग वृद्धि के प्रकरण में शायद वृद्धि में मिलेगा, इसका जवाब तो मिलेगा।
ऐसे अध प्रवृत्त शब्द तो कहाँ पे हमने नहीं पढ़ा था ना, खाली अध प्रवृत्त
आया है, अध प्रवृत्त संक्रमण से शब्द आया था, आगे जो वृद्धि का जो प्रकरण है ना उसमें मिलेगा तो देखेंगे। तो निश्चित वृद्धि का प्रकरण है आगे 160 स्वामित्व। कुछ खास नहीं लिया, सब पद किसके होते इतना ही लिया। छह वृद्धि छह हानि होती है, इतना ही लिया है उन्होंने। चलो जब आएगा तभी देखेंगे। हाँ, आना अपने पेज पर 159 पर। यानी वृद्धि कब होगी? वहाँ थोड़ा थोड़ा संक्लेश बढ़ेगा, वहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा वृद्धि होगी। यहाँ जघन्य वृद्धि की बात चल रही है और प्रत्याख्यान की उत्कृष्ट वृद्धि तो मिथ्या दृष्टि के होगी, यहाँ समय दृष्टि लिया है और वो भी जघन्य वृद्धि से, अनंत भाग वृद्धि से, उसी के तदनंत समय में जघन्य अवस्थान। देखो वृद्धि के बाद अवस्थान लिया, जघन्य हानि किसके होती है? जो अनंतर समय में संयम को प्राप्त करेगा, ऐसे अंतिम समयवर्ती अन्यतर असंयत समय दृष्टि के, उसकी जघन्य हानि होती है। मुझे ऐसा लगता है अभी ये सोचने पर, मिथ्यात्व में जो अध प्रवृत्त लिया तो समयत्व से छूट कर जो आया है उसको लेना। अब अध प्रवृत्त समय दृष्टि के ने ऐसा ले सकते हैं कि ऊपर के गुणस्थान से नीचे के, अभी समय तो छूटा नहीं है,
सातवें से चौथे में जाता,
सातवें से मत लाओ उसको,
पांचवें,
सातवें से नहीं आता कोई, अन्य स्मरण के समय आता
है, सॉरी
छठे से पांचवें में, या पांचवें से पांचवें में से चौथे में ले सकते हैं। हाँ छठे से पांचवें में, और यहाँ भी समय मिथ्यात्व तो में जो लिया है वैसे भी लेना उसमें। हाँ समयत्व के सन्मुख में उसकी वृद्धि नहीं होगी,
हाँ जो
उसकी हानि
होगी,
समयत्व के सन्मुख तो देखो
यहाँ
समय मिथ्यात्व को लेना, हानि में किसको लेना?
जगन
चौथी लाइन, तदनंतर समय में समयत्व को प्राप्त होगा, उसके अंतिम समय हानि करके वो उस समय पर पहुंचा है। दो समयों के कंपैरिजन करेंगे तो हम हानि कह सकेंगे, तो पूर्व समय से जितनी थी उससे जघन्य हानि होके अंतिम समय में उसका जघन्य हुआ है। ये तो हमने अप्रत्याख्यान की पढ़े अभी, इसी प्रकार मिला प्रत्याख्यानावरण चतुष्क की अपेक्षा कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि संयता संयत के कहलाना चाहिए, उसमें भी ऐसा कहेंगे अनंत भाग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, अन्यतर अध प्रवृत्त संयता संयत वृद्धि में अवस्थान उसके पश्चात, और जो अंतिम अनंत समय में संयम को प्राप्त करेगा ऐसा अन्यतर संहिता संहित अंतिम समय वर्ती, चौथे वाला नहीं, प्रत्याख्यानावरण की मैं पढ़ रही हूँ। इसी प्रकार का अर्थ है ना, वो संहिता संहित में घटित करना है, संहिता संहित वाला जो सातवें के सम्मुख है अंतिम समय में उसने जघन्य हानि करके वो जघन्य अनुभाग उदीर्ण करने लगा है।
जो पांचवें से सातवें में जाएगा या चौथे से सातवें में जाएगा वो तो करण परिणाम पूर्वक जाएगा कि इससे ही जाएगा,
करण हो गए वहाँ पर,
तो वहाँ पे करण में परिणाम में भी इतनी अरे अनंत भाग हो सकती है।
आपको क्या कहना, वरना अनंत गुना कहना है?
नहीं अनंत भाग हानि हो सकती है क्योंकि यह जघन्य की बात कर रही है ना, जघन्य वृद्धि।
हमने जघन्य ऐसा ही लिया था ना, जब हमने जघन्य का स्वामित्व देखा था तो अंतिम समय वाली संहिता संहित को देखा था, परंतु उस समय
करण परिणाम की अपेक्षा तो वहाँ पे तो वृद्धि एकदम बढ़ेगी ना, तो वृद्धि बढ़ेगी तो अनंत गुणा वृद्धि हो जाएगी
ना। ना पांचवे से सातवें में जाने वाले का वहाँ कुछ करण परिणाम की बात आई नहीं थी?
नहीं हम लोग ऐसे सोचते थे कि करण परिणाम हो गए और करण परिणाम पूर्वक ही जाएगा तो चौथे से छठे सातवें में दो करण होते हैं ना नियम से, कैसे नहीं है?
नहीं नहीं नियम से नहीं होते, क्योंकि ऊपर से गिर के आया है और अंतर्मुहूर्त में फिर चढ़ा है तो बिना करण के भी होते हैं, बिना करण के भी होते हैं ना, ऑलरेडी
हाँ।
जो संयम ही है
हाँ।
एक अंतर्मुहूर्त तक पांचवे में आया और फिर
वापस संयम
पर, तो हाँ, उसमें तो बिना करण के भी हो सकते हैं। चार संज्वलन की जघन्य वृद्धि किसके होती है? उपशम श्रेणी से गिरकर दूसरे समय में उदीर्ण करने वाले अन्यतर जीव के, उसकी जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे ना, नहीं था, कंपेयर किसके साथ करेंगे? इसलिए दूसरे समय में लेना। जघन्य हानि किसके होती है? क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर जो क्षपक उदीरणा के अंतिम समय में स्थित है, ऐसे अन्यतर क्षपक के उसकी जघन्य हानि होती है। यानी उस समय जो उदीरणा होती है उसको जघन्य उदीरणा कहेंगे, अनुभाग उदीरणा, और उस समय कितनी हानि करके उस पॉइंट पर पहुंचा है तो जघन्य हानि करके। आपके प्रश्न का उत्तर है यहाँ करण है कि नहीं है? बोलो अश्विनी।
सपक शब्द यहाँ पे करण नहीं है ना?
करण नहीं है, इसका नाम ही
परिणाम,
नाम ही अनिवृत्ति करण है।
हाँ नहीं, सम्यक्त्व की अपेक्षा जो बात कर रहे हैं
उसका नहीं, संज्वलन की बात चल रही है।
हाँ, नहीं ये संज्वलन के बराबर है। मैं ऊपर का सोच रहा था कि सम्यक्त्व में तो करण परिणाम हो गए, सम्यक्त्व की जो सपना करता है
वहाँ सम्यक्त्व की भी बात नहीं चल रही थी, अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण की चल रही थी।
नहीं, मैं ऊपर का पैराग्राफ में जो सम्यक्त्व की देखा ना, जो सपना करने को जा रहा है उसको एक समय प्लस एक, अरे एक समय अधिक अवधि के अंतिम समय वाला को जघन्य हानि होगी, तो वहाँ पे तो करण परिणाम नहीं है क्योंकि करण परिणाम होती
जो, क्योंकि जहाँ जिसका अनुभव जघन्य होकर उदय में आने वाला है उसकी बात चल रही है, करण परिणामों की यहाँ चर्चा ही नहीं है। जघन्य अवस्थान किसके होता है? जो अनंत भाग बुद्धि करके अवस्थित है, ऐसे अन्यतर अधप्रवृत्त संयत के, ये अधप्रवृत्त संयत शब्द है ना, अभी ऊपर जो जघन्य वृद्धि देखी थी उपशम श्रेणी से गिरकर दूसरे समय, हाँ उधर नहीं लेना है। अनंत भाग वृद्धि करके अवस्थित है ऐसे अन्यतर, क्योंकि वहाँ तो
अवस्थान तो होगा
नहीं, अवस्थान नहीं होगा
वहाँ पर, चला
जाएगा। अधः प्रवृत्त संयत लिया, अधः प्रवृत्त का अर्थ ऐसा ही है कि जहाँ ऊपर से नीचे की ओर आया है ऐसा जीव लेना है वहाँ। इस प्रकार इसी प्रकार तीन वेदों की अपेक्षा जानना चाहिए, यानी जैसा अभी हमने संज्वलन में देखा है वैसे ही तीन वेदों में लगाना। कहाँ लगाना? उपशम श्रेणी से गिरते समय और अधप्रवृत्त संयत
समय में।
हाँ।
और अवस्थान वापस सातवें गुणस्तर में लेना है।
हाँ, अधप्रवृत्त संयत में लेना उसे। छह नौ कषायों की जघन्य वृद्धि किसके होती है? उपशम श्रेणी से गिरकर अपनी उदीरणा के दूसरे समय में विद्यमान।
आठवें गुण स्थान में आया होगा, सॉरी
ये कहाँ पर होगा? लक्ष्मी बेन आठवें में क्यों? हाँ, इसका उदय आठवें गुण स्थान में होगा क्योंकि उसकी उदय की विच्छित्ति आठवें में थी, तो वापस उदीरणा और उदय भी आठवें में होगा। अन्यतर उदीरक के उसकी जघन्य वृद्धि होती है दूसरे समय में, क्योंकि पहले समय से दूसरे समय में उसकी वृद्धि बता सकते हैं। जघन्य हानि किसके होती है? अपूर्वकरण के अंतिम समय में स्थित अन्यतर क्षपक के उनकी जघन्य हानि होती है।
ये हानि जब सभी जगह सपना में ही लिया है।
हाँ, जहाँ जहाँ जिस कर्म का जघन्य अनुभाग उदय उदीरणा है, स्वामित्व की अपेक्षा जहाँ जघन्य अनुभाग उदीरणा है वहीं पर पूर्व समय की अपेक्षा जघन्य
हानि
बताई। वैसे उल्टा उतर कर आना है, जैसे यहाँ उपशम श्रेणी से उतर कर की बात की थी वैसे अधप्रवृत्त हर गुणस्थान में लगा लेना, इन्हें नीचे आया हुआ ऐसा जीव लेना, इन्हें सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया हुआ, सम्यक्त्व में भी अधप्रवृत्त लगाया तो वो भी ऊपर के गुणस्थान से नीचे आया हुआ जीव लेना। हाँ देखो, यहाँ तो उपशम श्रेणी से गिरकर वाला लिया जघन्य वृद्धि के लिए, अपूर्व के करण के अंतिम समय में स्थित वाला लिया जघन्य हानि के लिए। जघन्य अवस्थान किसके होता है? अनंत भाग वृद्धि करके अवस्थित हुए अन्यतर अध प्रवृत्त संयत के, उनका जघन्य अवस्थान है। क्योंकि उपशम श्रेणी से गिरने वाला वो अवस्थान वहाँ नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ नीचे ले लिया थोड़ा। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जान लेना चाहिए आदेश से। नारकियों में मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है, इतनी विशेषता है कि जो तदनंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा, ऐसे अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य हानि होती है। तथा मिथ्यात्व के एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर जो उदीर्णा के अंतिम समय में स्थित मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का अंतिम समय नहीं, उदीर्णा का अंतिम समय है,
उसके
मिथ्यात्व की जघन्य हानि होती है।
जघन्य हानि के पश्चात अवस्थान होगा ही नहीं, वहाँ पे रुक ही जाएगा,
इसीलिए वहाँ नहीं लिया
है।
क्योंकि हानि तो वही उसी को कहते हैं जहाँ जघन्य अनुभाग उदीर्णा है, उसी समय जघन्य हानि होके उसकी उदीर्णा हुई है। उसके पूर्व समय से उस समय कितनी हानि हुई तो जघन्य में जघन्य हानि, अनंत
अवस्थान हो गई,
इसलिए उसमें अवस्थान नहीं हो सकता। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। बारह कषाय और सात नौ कषायों की जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अनंत भाग वृद्धि करके वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्यतर सम्यक दृष्टि के अध प्रवृत्त नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान नहीं है ना वहां आने के लिए। उनकी जघन्य वृद्धि होती है। जो अनंत भाग हानि करके हानि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्यतर सम्यक दृष्टि के उनकी जघन्य हानि होती है, और इनमें से किसी एक जगह उनका जघन्य अवस्थान होता है। यानी इनके लिए ये हानि वृद्धि तो चलेगी। मनुष्य तिर्यंचों में ऊपर के गुणस्थानों में चलने वाले के अंतिम समय में, उस गुणस्थान के अंतिम समय में लेते हैं, तो वहाँ हानि के पश्चात अवस्थान नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पारह कषाय और सात नौ कषायों का जो जघन्य वृद्धि हानि है वो समय दृष्टि के होगी। चौथा ही गुणस्थान है यहाँ पर नारकियों में, तो वृद्धि में भी और हानि में भी अवस्थान दोनों जगह हो सकता है। ख्याल में आई बात लक्ष्मी? ओग में या मनुष्यों में जब हम देखते हैं ऊपर के गुणस्थानों के सन्मुख वाला अंतिम समय में वर्ती उस गुणस्थान का वो जघन्य उदीर्णा करता है, और वहीं पर उसकी जघन्य हानि है। परंतु यहाँ नारकी में समय दृष्टि एकमात्र चौथा गुणस्थान है, ऊपर कहीं जाने का सवाल नहीं है। तो बारह कषाय और छह को ले लिया ना पहले में, सात नौ कषाय को ले लिया हमने, एक ही नपुसक वेद है इसलिए सबको ले लिया। तो उनकी वृद्धि भी और हानि भी
चौथे गुणस्थान,
जहाँ चौथे गुणस्थान वाले के जो संकलेश चल रहा है उस योग्य अनंत भाग वृद्धि वाले संकलेश, तो वहाँ जघन्य वृद्धि कहेंगे। अनंत भाग हानि वाले विशुद्धि चल रही है तो जघन्य हानि कहेंगे।
अवस्थान किसी की,
हाँ अवस्थान दोनों जगह होगा। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है के दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में सम्यक्त्व का भंग बारह कषायों के समान है। मेरा प्रश्न ऐसा है, ऐसा क्यों कहा प्रेरणा बेन? सम्यक प्रकृति में कब होगा? कृतकृत्य में, अंतिम समय में पहुंच गया है, अवली और एक समय के तो दूसरे से सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त्व का कब होगा? तो सम्य दृष्टि है, संकलेश अनंत भाग वृद्धि वाला संकलेश परिणाम है, तो जघन्य वृद्धि अनंत भाग हानि वाले जो विशुद्ध परिणाम चल रहे तब जघन्य हानि, और कहीं पर भी अवस्थान होगा उसका। हिरियंचो में मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है, ओघ के समान है ने? अब यहाँ पर कैसे लेना, संयता संयत के सन्मुख वाला लेना। इतनी विशेषता है, इनके जघन्य हानि किसके होती है? जो तदनंतर समय में संयमा संयम को प्राप्त करेगा, ऐसे अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उनकी जघन्य हानि होती है। और ओघ में संयम के अभिमुख को अलग लिया था, यहाँ तीर्यन चाहिए इसलिए संयता संयत को लिया। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए।
क्या मिथ्यात्व में प्रथम अक्षर वाला लेना है कि प्रथम अक्षर
अंतिम समय कैसे होगा? प्रथम अक्षर
नहीं, प्रथम अक्षर के पूर्व वाला लेना है कि अध प्रवृत्त।
हमने पहले देखा था देव और नारकी में प्रथम अक्षर सम्यक्त्व वाला लेना, जो आवली और एक समय बाकी है तब की बात, और अनंतानुबंधी का अंतिम समय में, और तिर्यंच और मनुष्यों में, तिर्यंचों में पांचवे के सन्मुख वाला अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि,
और मनुष्य में
उसके मिथ्यात्व का भी जगन्य है और अनंतानुबंधि का भी, और मनुष्यों में संयम के अभिमुख वाला भी। तो कहते इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सम्यक् दृष्टि के कहलाना चाहिए, यानी वो चौथे से पांचवे में जाने वाला लेना है। मनुष्यों में चौथे से संयम के संयम में प्राप्त करने वाला लिया। सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, तिर्यंचों में भी वो कृतकृत्य वेदक वाला है तो वहां ओघ के समान है। सम्यक् मिथ्यात्व में भी लेना है, ऊपर से नीचे आने वाला जो जीव है यहाँ पर ओग के समान है, अध प्रवृत्त कहाँ पर? इसी प्रकार जानना चाहिए, कह दिया ना उन्होंने, तो ये अध प्रवृत्त वगैरह बातें उसमें घटित होगी, पांचवे से चौथे में आने वाला ले सकते वहां पर। आठ कषाय और नौ नौ कषायों की जघन्य वृद्धि किसके होती है? अब यहाँ हमने नारकियों में बारह कषाय लिए थे और सात नौ कषाय, यहाँ आठ कषाय और नौ के नौ नौ कषाय लिए, तब ये किसके हो सकती है? हमने तो पढ़ा नहीं ना आगे, ये किसके होगी जघन्य वृद्धि और हानि? तीर्यंच में हाँ, पांचवे गुण स्थान तो किसके होती है? तो अनंत भाग वृद्धि करके वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्यतर संयता संयत के उनकी जघन्य वृद्धि होती है, और जो अनंत भाग हानि करके हानि करता है ऐसे अन्यतर संयता संयत के उनकी जघन्य हानि होती है। ये ध दिख रहा है जघन्य करना, तथा इनमें से किसी एक जगह उनका जघन्य अवस्थान होता है। नारकियों में चौथे गुणस्थान में घटित करना था और यहाँ पांचवे में करना है, उनकी वहां ज्यादा विशुद्धि है और उसमें हानि वृद्धि कम होगी, जघन्य उनके लिए। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, अपना अपना वेद जानना चाहिए, क्योंकि पंचेन्द्रिय तिर्यंच पहले जनरल कहेंगे, तीनों वेद आ जाएंगे। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त में पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और योनिनियों में स्त्री वेद, तथा योनिनियों में सम्यक्त्व का भंग आठ कषायों के समान है, यानी क्या होगा? पांचवे गुणस्थान वाले यथा योग्य वृद्धि हानि
सपना नहीं होगी,
कृतकृत्य वेदक नहीं होगी। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि किसके होती है? तो अनंत भाग वृद्धि से युक्त अन्यतर जीव के उनकी जघन्य वृद्धि होती है और अनंत भाग हानि से युक्त अन्यतर जीव के उनकी जघन्य हानि होती है और इनमें से किसी एक जगह उनका जघन्य अवस्थान होता है। ये तो किस किस रूप में वृद्धि हानि करता है उसकी बात है, अन्य वृद्धि नहीं होती वो बात नहीं चल रही, यहाँ जघन्य किसके होती है उसकी बात चल रही। देवों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 16 कषाय और 6 नौकषायों का भंग नारके उनके समान है। वहां देखा था ना मिथ्यात्व का जो कब होगा,
एक समय प्लस सावली वाला सम्यक्त्व को प्राप्त करना,
हाँ, प्रथम उपशम सम्यक्त्व वाला लेना। 16 कषाय में से अनंत अनुबंधी का तो मिथ्यात्व का अंतिम समय लेना और अन्य 12 जो कषाय है वो समय दृष्टि के लेना। स्त्री वेद और पुरुष वेद का भंग 6 नौ कषायों के समान है। देव है इसलिए स्त्री वेद पुरुष वेद लिया, नपुसक वेद लिया नहीं। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए, ऊपर स्त्री वेद नहीं होगा। इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें स्त्री वेद नहीं है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में भंग सामान्य देवों के समान है, इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व का भंग 12 कषायों के समान है। क्योंकि यहाँ पर क्या काम कारण है, कृतकृत्य वेदक नहीं, भवनवासी है ना, हाँ, यानी भवनत्रिक है। अनुदिश से लेकर सर्वा सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व 12 कषाय और 7 नौ कषायों का भंग आनंद कल्प के समान है, यानी सम्यक दृष्टि है वहां पर और उनके कभी संकलेश विशुद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि करने वाले की वृद्धि होगी, हानि करने वाले की हानि होगी। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब अल्प बहुत्व का प्रकरण है, ये कौन सा विषय चल रहा है, हाँ, पद निक्षेप। तो पद निक्षेप में अल्प बहुत्व कितने नंबर का, 3 ही है ना, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्प बहुत्व, तो पद निक्षेप वाला नंबर 3। अल्प बहुत्व 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, हाँ, उत्कृष्ट का प्रकरण। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 16 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। अभी जगन्य की बात नहीं है, थोड़ी उत्कृष्ट की सोच देख लो, वृद्धि उत्कृष्ट की एक बार, क्योंकि अभी जगन्य 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 पढ़ के आए ना। देखो 156 पृष्ठ पर लिखे हैं, अभी जहाँ संकलेश ज्यादा लेना है तो मिथ्या दृष्टि लेना। तो मिथ्या तो 16 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती, हमने देखा था 156 पृष्ठ पर। तो उत्कृष्ट सत्कर्म वाला यानी अनुभाग जिसका मैक्सिमम है सत्ता में, और जो जो उत्कृष्ट संकलेश को है प्राप्त हुआ है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। और हानि किसके होती है, उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जीव मरा और बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ हम उसका अल्पभूत देख रहे हैं, किसी प्रकृति के उत्कृष्ट वृद्धि और हानि में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वृद्धि ज्यादा है कि हानि ज्यादा है। एक प्रकृति के दूसरे प्रकृति के साथ अल्पभूत नहीं चल रहा, अपने अपने पदों में चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे, ओग से मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है, उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है। उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है।
ये उत्कृष्ट वृद्धि से अवस्था में विशेष अधिक कैसे लिया?
देखो, क्योंकि वहां हानि के पश्चात अवस्थान हुआ था।
तो वृद्धि से हानि ज्यादा है।
ये देखो, हानि के लिए अलग जीव लिया और अवस्थान के लिए अलग लिया। वो एक इंद्रिय में जन्मने वाला उसी को अवस्थान में नहीं लिया है। देखो निकाला 156।
उत्कृष्ट अनुपात
वृद्धि किसके होती है? तो उत्कृष्ट सत्कर्म सहित था और उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ था, उसके उत्कृष्ट वृद्धि हुई, यानी उसने मैक्सिमम उसका अनुभव उदीर्ण की उसने, उत्कृष्ट वृद्धि हुई। उत्कृष्ट हानि किसके होगी?
उत्कृष्ट उदीर्ण करने वाला,
जो उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्ण करने वाला जो मरकर बादर एकेंद्रिय में हुआ, उनकी उत्कृष्ट हानि हुई है। तो उसके तदनंतर समय में उसका अवस्थान नहीं बताया वहां पर, अन्यत्र तो अनंतर समय में बताया था। अब हानि के लिए अलग जीव लिया कि जो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त हुआ, वहीं पर रहते हुए वहां उसकी उत्कृष्ट हानि तो नहीं हो सकती, यथायोग्य हानि होगी, परंतु वो अवस्थान के लिए वो उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट उसकी जो, देखो हानि उससे भी ज्यादा बताई है, ये अन्य अन्य जीव लिए है। पहले तो ऐसा जीव लिया था, विशिष्ट अनुभाग उदीर्ण कर रहा था, पर सत्ता में तो अनुभाग ज्यादा था और उसके संकलेश ज्यादा हुए, तो उसने उत्कृष्ट वृद्धि की, ये उसका उत्कृष्ट वृद्धि का प्रकरण। अब अवस्थान यानी उत्कृष्ट संकलेश वाला उदीर्ण कर रहा था, अवस्थान उसका कितना बताया? वृद्धि से थोड़ा ज्यादा बताया ना।
हाँ, वृद्धि से ज्यादा
बताया। तो वो यहाँ से उत्कृष्ट वृद्धि के लिए यहाँ से यहाँ पहुंचा था, परंतु हानि में वो यहाँ यहाँ आ गया। यथायोग्य उसकी विशुद्ध हुई उत्कृष्ट संकलेश से। पंचेंद्रिय भी होगा, ये उसका अवस्थान कहेंगे। इतनी हानि होने पर उसका, यानी उसी भव में उसी पर्याय में रहते हुए इतनी हानि करके उसका अवस्थान हुआ, परंतु उत्कृष्ट हानि इसको नहीं कहा, उत्कृष्ट अवस्थान तो कह दिया। उत्कृष्ट हानि के लिए क्या कहेंगे? ऐसा ही कोई जीव संकलेश परिणाम वाला और मरकर एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, दूसरे समय में उसकी इतनी होगी जो कुछ यथायोग्य।
तो यहाँ पे जो पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में गए उसका अवस्थान नहीं हो सकता है।
नहीं होगा, नहीं तो बताते ना वहां पर। क्योंकि अवस्थान उतना ही उसके दूसरे समय में नहीं रहेगा,
उसका और कम हो जाएगा।
जो ये था एक जो कुछ उसको अवस्थान नहीं होगा, तो इसलिए ये यहाँ से ऊपर गया था उत्कृष्ट वृद्धि से, ये उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है और उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। अवस्थाने ने उसी पर्याय में रहा हुआ जीव लिया, उसके परिणाम वहां पर ले लिया। फिर आते अपने पेज पर, स्वामित्व ने 156 पर देखा ना अभी। हाँ, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है, उत्कृष्ट अवस्थान उतना ही है क्योंकि हानि के पश्चात अवस्थान देखा था, और उत्कृष्ट वृद्धि कितनी अनंत गुणी है। निकालो फिर स्वामित्व। देखो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ अंतिम समय में विद्यमान जो अन्यतर जीव है उसके उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। पूर्व समय से यहाँ पर उसकी वृद्धि ज्यादा है। और उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोगिक विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट हानि होती है। यहाँ वो संयम के अभिमुख वाला नहीं लिया है, वहां तो जघन्य वृद्धि होगी, सॉरी जघन्य हानि होगी उसकी। यहाँ क्या लिया है?
विशुद्धि वाला
नहीं, संकलेश से विशुद्धि को प्राप्त हुआ। यथायोग्य लेना उसमें जितना हो सकता है। जहाँ पर पहले संकलेश वाला था, अभी सम्यक्त्व के लिए सम्यक्त्व में रखना, सम्यक् मिथ्यात्व के लिए सम्यक् मिथ्यात्व में रखना। तो यथायोग्य उत्कृष्ट संकलेश था, उसमें यथायोग्य उसकी विशुद्धि हुई, तो उसकी जघन्य सॉरी उत्कृष्ट हानि हुई। यही हमने फिर पढ़ेंगे यहाँ पर। अल्प बहुत्व में आते हैं 162 प्रश्न पृष्ठ। तो देखो उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। उत्कृष्ट हानि यानी उसी गुणस्थान में रहते हुए उसके, हमने देखा संकलेश से उसकी विशुद्धि हुई, तो उत्कृष्ट हानि वो सबसे स्तोक है। उत्कृष्ट अवस्थान उतना ही है क्योंकि हानि के पश्चात अवस्थान देखा था, और उत्कृष्ट वृद्धि अनंत गुणी है। उत्कृष्ट वृद्धि कब कही थी हमने? उत्कृष्ट वृद्धि कब हुई थी?
मिथ्यात्व के सन्मुख थी,
मिथ्यात्व के अभिमुख वाला लिया, वहाँ संकलित सर्वोत्कृष्ट है। यानी पूर्व समय से अनंत गुणी उसकी तो अनुभाव उदीर्ण हुई, अनुभाव उदीर्ण। नौ कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। नौ कषायों में उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम है, उससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है। नौ कषायों की तो सम्यक दृष्टि के लिए ना है ना, नहीं उत्कृष्ट वृद्धि मिथ्या दृष्टि के होगी। मैं जगन्य की बात सोच रही थी।
ये उत्कृष्ट हानि तो
पुरुष वेद में तो हमने वो 8 वर्ष का कर्म लिया था, यानी उत्कृष्ट उदीर्ण कर रहा था तब तत्प्रायोगिक विशुद्धि हुई तो उत्कृष्ट हानि होगी, उसके पश्चात उसका उत्कृष्ट अवस्थान होगा। ख्याल में आई बात? पेज नंबर 156 पर था, स्त्री वेद और पुरुष वेद में लगाया था उन्होंने। करब की बात थी,
केमल में देखा था।
हाँ, और नौ कषाय में अन्य जो अन्य छह की जो बात है, नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा में उन्होंने बताया था कि हाँ वो नारकी में घटित करना में। सातवें पृथ्वी के हास्य अरति में हाँ करब यानी ऊंट, 8 वर्ष का ऊंट। हाँ हाँ, कल आप नहीं थे, कल इसकी बात आई थी करब 106, कल थी ना आप?
नहीं।
हाँ पहले इसी में, हाँ और कल फिर आया था इसलिए सबको याद था। करब ऊंट, तो नौ कषाय में हमने देख लिया। नौ कषाय में से स्त्रीवेद पुरुषवेद की बात वो ऊंट में घटित थी, और नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा
सातवें
नरक में,
हास्य
रति सहस्रार का। तो यहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धि कम है क्योंकि उनके यथा योग्य जघन्य थी, यथा योग्य हो उससे उत्कृष्ट की ओर बढ़े, उससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान विषय शरीफ है। तो जहां ये यथा योग्य चल रहा था उसके बाद उनकी विशुद्धि हुई तो हानि विशेष अधिक हो गई और उसी के पश्चात अवस्थान हुआ। सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में, सब करना सब हुआ, सब देवों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में हमने क्या देखा था,
अनंत गुण ही है।
उत्कृष्ट हानि सबसे कम है, अवस्थान उतना ही है और उत्कृष्ट वृद्धि अनंत गुणी थी।
यहाँ पे सभी जगह विशेष अधिक है।
और अन्यत्र भी यहाँ का कहने शेष प्रकृतियों में क्या होगा, वहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम है, वहाँ हानि कम ली थी, यहाँ वृद्धि कम है, उससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण, ये जघन्य ताजा ताजा है ना अभी अपने
वो भूल गए ना
निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, सम्यक्व, सम्यक मिथ्यात्व और बारह कषायों की जघन्य हानि सबसे स्तोक है। जघन्य हानि उनके जघन्य के अंतिम समय में होती है,
सपना के अंतिम।
तो मिथ्यात्व का जघन्य कब होगा, संयम के अभिमुख वाला लेना। सम्यक्त्व का कृतकृत्य वेदक में लेना, सम्यक मिथ्यात्व का चौथे के अभिमुख लेना और बारह कषाय उनकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है। अभी यहाँ पर संज्वलन छोड़कर,
प्रत्याख्यान के पांचवें के सम्मुख
संज्वलन छोड़कर, क्योंकि अनंतानुबंधी के तो संयम के अभिमुख वाला लेना और अन्य आठ वाला अपना एक चौथे गुणस्थान में, एक पांचवें गुणस्थान में लेना। तो हानि सबसे स्तोक है, उससे जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कितना है,
अनंत
गुणा है। चार संज्वलन और नौ नौकषायों की जघन्य हानि सबसे स्तोक है। एक सपना में हमने देखी थी अंतिम समय में, उससे जघन्य वृद्धि अनंत गुणी है। वृद्धि हमने हर एक की देखी थी, नीचे के लौट कर आता है फिर
श्रेणी से।
उससे जघन्य अवस्थान अनंत गुणा है। अभी अवस्थान भी अनंत गुणा कहा, क्योंकि अवस्थान जो होता है तो अधप्रवृत्त संयत में लेना
उसे।
इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जानना चाहिए, क्योंकि चार संगलन नवनों का शायद जो श्रेणी में घटित होता है वो मनुष्य में ही घटित होगा।
ये अवस्थान सातवें में होगा कि छठे में होगा, संयत
सातवें में हो सकता है वैसे,
क्योंकि वहाँ पे तो अनंत गुणी वृद्धि होती है तो अवस्थान होगा, उसके परिणाम तो स्व सन्मुख है तो विशुद्धि बढ़ती जाएगी। पर जो सातवें छठे में जाएगा उसका अवस्थान हो सकता है कि सातवें में ही हो सकता है।
गुणस्थान की बात नहीं है, ये श्रेणी का नहीं है ना, अभी उतरने वाला
श्रेणी से उतरा है। सैयद को बताए तो छठे गुणस्थान में लेना के साथ में,
दोनों में अध प्रवृत्त शब्द आता है। अध प्रवृत्त संयम, अप्रमत्त अध प्रवृत्त, प्रबंध संयत इतना ही लिया ना।
नहीं सैयद वो बराबर है, पर सैयद छठा गुणस्थान लेना के साथ पर
यहाँ तो लिखा नहीं है, आप बताओ।
नहीं मेरे को ऐसा लगता है छठे गुणस्थान में अवस्थान होगा, सातवें में तो अवस्थान नहीं होगा।
तो यहाँ लिखते ना वैसे
सातवें में से छठे
क्यों नहीं होगा। अवस्थान होने में कोई हर्जा तो नहीं है वहाँ पर, उतरते समय इसलिए नहीं लिया कि वहाँ तो बढ़ते चला जाए, ज्यादा बुद्धि है इसलिए।
हाँ तो वही मेरा क्वेश्चन है कि सातवें गुण स्थान में स्वसन्मुख जीव है और छठे में
स्वसन्मुख वगैरह तो द्रव्यानियोग की भाषा है, वो यहाँ नहीं लेनी। यहाँ संकलेश विशुद्धि की बात है, वही वैसा का वैसा परिणाम, परिणाम में भी नहीं लेना, वैसा के वैसे अनुभाग उदीरणा की बात है यहाँ। हाँ। परिणाम की भी बात नहीं लेनी।
हाँ, यहाँ पे
हाँ उधर तो चल ही रहा है ना, वहाँ तो उतरते समय। हाँ नहीं, परिणाम के अनुसार उदय होगा भले, नहीं परिणाम के अनुसार अनुभाग उदीरणा तो परिणाम के अनुसार हो रहे। तो सातवें में हमने देखा, जैसे अभी इसकी बात छोड़ो उदीरणा की, सातवें में जो आता है तो शुरुआत में उसके स्टीप राइज,
स्टीप राइज है,
बाद में उसके परिणाम
स्टेबल हो
जाए, स्टेबल होते हैं। ये हो गया अपने आदेश से चलेगी बात। नारकियों में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी भी बराबर करो, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। ओग के समान है, अल्प बहुत्व ओग के समान है। स्वामित्व भले अल्प हो परंतु अल्प बहुत्व में जघन्य हानि सबसे कम है, ऊपर बताया था ना, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान अनंत गुण है। अब 12 कषाय और 7 9 कषायों के ऊपर तो अलग अलग बताया था, अब 12 कषाय और 7 9 कषाय में वहां 12 कषाय लिए थे तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को लिए थे ओग में, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, और संज्वलन को अलग निकाला था। यहाँ 12 कषाय में
अनंतानुबंधी को छोड़ दिए,
अनंतानुबंधी को छोड़कर यानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। इनकी जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवसान तीनों ही सदृश है, क्योंकि समय दृष्टि को अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग हानि और अवस्थान ऐसे बताया था यहाँ पर नारकियों में। लक्ष्मी ख्याल में आती बात, इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में यदि यहाँ तीनों समान बताएंगे, सम्यक्त की जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही सदृश है। जहाँ कृतकृत्य वेदक है वहाँ पर हमने हानि सबसे स्तोक देखी थी, वृद्धि और अवस्थान अनंत गुणा बताया। तिर्यंचों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और 8 कषायों का भंग ओघ के समान है। आठ कषाय और 9-9 कषायों के तीनों ही पद सदृश हैं। मेरा प्रेरणा बेन से सवाल है, ये 8 कषाय 8 कषाय दोनों जगह लिया तो ओघ के समान है जहाँ लिखा है, वहाँ कौन से 8 कषाय लेना है? हाँ लक्ष्मी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान यानी वहाँ ओग के समान है हानि सबसे स्तोक और वृद्धि और अवस्थान अनंत गुणा। फिर कहते हैं 8 कषाय और 9-9 कषाय तीनों ही पद सदृश है जो समय दृष्टि के होंगे, तो यहाँ कौन से लेने हैं? प्रत्याख्यान और संज्वलन। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जान लेना चाहिए। योनि नियम में सम्यक्त्व के तीनों ही पद सदृश है, क्योंकि यहाँ कुछ तो कृत्य वेदक वाले नहीं होंगे। पंचेंद्रिय तिरेंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि हानि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही सदृश है, क्योंकि वो बताता है जहाँ संकलेश विशुद्धि अनंत भाग वृद्धि वाले और अनंत भाग हानि वाले हो गए तो वो समय समय देवों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानु अनंता करो हाँ अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओह के समान है, यानी उनकी
हानि स्तोक है,
हानि सबसे कम है,
वृद्धि और अवस्थान
वृद्धि और अवस्थान अनंत गुना है। बारह कषाय और आठ नौ कषाय उनके तीनों ही पद सदृश है। क्योंकि समय दृष्टि के हो गए अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि वाले। इसी प्रकार बहुनवासियों से लेकर सौधर्मा ऐशान कल्प तक जानना चाहिए, क्योंकि आठ नौ कषाय लिए थे इसलिए वहां तक ही लिए। कौन सा कषाय छोड़ दिया? नौ कषाय, आठ नौ कषाय लिए ना, नपुसक वेद छोड़ा, देवों की बात है। अब इतनी विशेषता है कि बहुनवासी वंतर और ज्योतिषी देवों में सम्यक्त्व के तीनों ही पद सदृश है। ये क्यों लिखा ऐसा? कुछ तो कुछ तो वेदक नहीं है तो ये तीन पद किसके हो गए? सम्यक्त्व के, जघन्य बुद्धि हानि किस जीव के होगी? ना ना ना, देवों में भवनत्रिक में सम्यक्त्व की जघन्य वृद्धि जघन्य हानि किसके होगी? सम्यक प्रकृति सम्यक दृष्टि के, जब उसके जघन्य यथा योग्य जघन्य वृद्धि होगी परिणामों में, तब सनत कुमार से लेकर नव ग्रेविक तक के देवों में सामान्य देवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद नहीं है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक बारह कषाय और सात नौ कषायों का भंग आनत कल्प के समान है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए।
यहाँ पे ये जो आनत कल्प में बता रहे हैं, पहले बताया सनत कुमार से नव ग्रेविक तक में,
हाँ तो वैसा यहाँ समझ लेना, नवग्रेविक में आनंद इंक्लूड है।
हाँ, नहीं आनंद में अलग होगा ना, नीचे
अलग
के...
कुछ नहीं है।
हाँ, आनंद में क्योंकि शुक्ल लेखिया वाले है।
हाँ, हाँ। यथा योग्य जो अन्य हाँ। जो बारह कषाय में,
क्योंकि नीचे के स्वर्ग में तो कुछ अलग होगा और आनंद आनंद के समान उन्होंने अनुदिश और अनुत्तर में बताया।
हमेशा अनंत वाला एक ग्रुप अलग बनाते हैं हमेशा, इसलिए अनंत के समान बता दिया। वैसे तो ऊपर सनत कुमार से नव ग्रेविक तो सामान्य देवों के समान ही भंग बताया था, उसमें कोई विशेषता तो थी नहीं, और यहाँ भी उन्हीं के समान है, वहाँ भी कोई विशेषता तो है ही नहीं है, वो किसके होती है उसमें तो अल्प यही लगाना है ना, अल्पभूतव तो यही लगाना है, अल्पभूतव में क्या विशेषता होगी?
नहीं, यहाँ पे सम्यक अनुत्तर और अनुदिश में सम्यक तो में भी समान ही होगी ना,
सम्यक तो का जघन्य किसके होगा?
अच्छा, वहाँ पे कृत्य वेदक होगा।
बारह कषाय सात नौ कषाय उनका किसके होगा?
सम्यक दृष्टि के होगा, वहाँ पे तो सभी सम्यक दृष्टि है।
हाँ, सभी समय दृष्टि है, तो यथा योग्य जहाँ जघन्य वृद्धि कर रहा है जघन्य हानि कर रहा है वैसा क्यों लेना, उसमें कोई विशेषता नहीं है, यहाँ एटलीस्ट कुछ विशेषता नहीं है। इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ। वृद्धि का प्रकरण यानी भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि तीन अनुयोग द्वारा आते हैं ना अलग अलग, अब इसमें और ये तेरह अनुयोग द्वारा समुत्कीर्तना से लेकर अल्पबहुत्व तक समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा यानी वृद्धि का नंबर एक निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सब प्रकृतियों के छह वृद्धि छह हानि अवस्थित और अवक्तव्य पद है, बस है इतना बता दिया। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय 7 9 कषाय, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। ओघ के समान है ने क्या चवृद्धि हानि अवस्थित अवक्तव्य इतनी विशेषता है कि नपुसक वेद का अवक्तव्य पद नहीं है, बाकी सब में तो होगा। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। मैंने कौन कौन से टाइप की वृद्धि हानि होती इतना यहाँ का विषय है। तिर्यंचों में ओघ के समान भंग है, इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है और योनिनियों में पुरुषवेद और नपुसक वेद नहीं है, तथा योनिनियों में स्त्रीवेद का अवक्तव्य पद नहीं है। ये तिर्यंचों में पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात् और नपुसक वेद का भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता यहाँ इनका अवक्तव्य पद नहीं है। इसका अर्थ वहाँ छह प्रकार की वृद्धि और हानि होती है, यानी संक्लेश विशुद्धि में इतने वेरिएशन हो सकते हैं, अनंत गुणा वाला भी डिफरेंस पड़ेगा। सोलह कषाय और छह नौ कषायों का भंग ओघ के समान है, उसमें भी छह वृद्धि हानि होगी,
अवक्तव्य भी होगा।
अवक्तव्य भी होगा क्योंकि उदय पलटता रहेगा तो अवक्तव्य है, परंतु मिथ्यात्व में अवक्तव्य नहीं होगा उसमें। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है तथा मनुष्यनियों में पुरुषवेद और नपुसक वेद नहीं है। देवों में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता इनमें नपुसक वेद नहीं है तथा इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेद का अवक्तव्य पद नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है ना कि ये कोई कहते हैं ना तो परिवर्तन होता है वेदों का वगैरह वगैरह, ये कितनी कल्पना बात है, ये सिद्ध होता है। नहीं तो अवक्तव्य कहते ना, जैसे कषाय में अवक्तव्य होता था वैसे। अब कहाँ लिखा है ऐसा पूछते हैं, अभी एक एक पेज में लिखा है, अभी कहाँ लिखा है, हर पेज में लिखा है। हाँ, और तत्काल कौन सा पुस्तक है, कहाँ कौन से पेज पर है, और उनके पास तो एक भी नहीं मिलता पूछने वाले के पास, पुस्तक भी नहीं होते उनके पास तो, और वही प्रूफ मांगते हैं। हाँ देखो, ये मनुष्य त्रिक में देखा हमने, देवों में देखा, इनमें स्त्रीवेद पुरुषवेद का अवक्तव्य नहीं है। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सौधर्म ईशान कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर नवग्रहविक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता इनमें स्त्रीवेद नहीं है। अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सम्यक 12 कषाय और 7 9 कषायों का भंग आनत कल्प के समान है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो समुत्कीर्तना हुई पांच है, सॉरी
हाँ, अवक्तव्य नहीं है भवन वस्तु में बोलने वाला था अभी
सम्यक तो कहा मुख्य यहाँ कुछ नहीं है, वो वहीं पर है, कोई बात नहीं। अभी स्वामित्व अनुगम समुत्कीर्तना हो गई ना, अभी स्वामित्व दो नंबर, वृद्धि का नंबर दो। स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के सब पद किसके होते हैं, अभी कितने पद होते हैं तो छह वृद्धि छह हानि बता दी उन्होंने, अवस्थित और अवक्तव्य होते हैं। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के सब पद किसके होते हैं? अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होते हैं। आप क्या कहते थे आनंद के बारे में?
नहीं, आनंद में वहाँ पे बताया था, वो अनुदिश और अनुतर को आनंद के समान बताया था, और आनंद का कहाँ पे अलग उलग नहीं क्या था वहाँ पे, तो सनत कुमार महेंद्र से लेकर राहु देवी तक का।
हाँ, नहीं नहीं, अभी कुछ अवक्तव्य के बारे में कुछ बताने थे।
नहीं, ये तो भवनवासी में बताया अरविंद ने, तो मैंने बोला भवनवासी नहीं होगा, भवनवासी में सभ्यत्व का द्वितीयोक्तम वाला बरकर भवनवासी में उत्पन्न नहीं होगा, इससे हम करते हैं।
अवक्तव्य क्यों नहीं होगा?
भवन द्वितीय
मिथ्यात्व में ऐसे सम्यक्त्व में आने वाला वही मैं सोच रही थी, अवक्तव्य की कुछ बात बता दी।
मेरा भी सिंगल से
अभी ऊपर बात आई ना, आनंद से सर्वासी भी तक आनंद कल्प के समान है, तो वो कह रहे थे आपस में कि वहाँ वो अवक्तव्य नहीं होगा, अवक्तव्य
नहीं, 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 क्योंकि एक बात चलती है तो दूसरी बात भूल जाते
हैं। तो भवनवासी में द्वितीयोक्तम वाले उत्पन्न नहीं हो गए तो वहाँ अवक्तव्य कैसा होगा, परंतु मिथ्यात्व में से जाने वाले वेदक हो, प्रथम उपशम हो, जो कोई है उपशम के बाद वेदक होगा।
मेरा दंड में ख्याल आया और आपने बताया तो मैंने भी यहाँ पर ये बराबर है। नहीं, मैं सोच ही रहा था,
नहीं होता है कभी कभी ऐसा, हम दूसरे बारे में सोच रहे थे, हाँ हाँ ऐसा करके। और आनत और ग्रेवेक तक भी वो मिथ्या दृष्टि भी है और सम्य दृष्टि भी है।
नहीं, अनुदिश और अनुतर की बात आनत के समान ली है, इसीलिए
आनत के समान अन्यत समानता नहीं लेनी है। बस आनत के समान इसलिए कहा क्योंकि वो ग्रुप शुक्ल लेशा वाला अलग है, इतनी इसमें दूसरी कोई नहीं। आनत में तो मिथ्या दृष्टि भी समय दृष्टि भी है, यहाँ तो मिथ्यात्व का भी उदय उदीर्णा चल रही है।
नहीं, मैं क्या पूछ रहा था कि आनत में जो वृद्धि और हानि में जो हमने अनंत गुणा देखा था ना,
कोई फर्क नहीं, वहाँ भी छह है वहाँ भी छह है, उसमें क्या फर्क है? नीचे के देवों में भी है,
नहीं शुक्ल एशिया वाले में भी
कोई फर्क नहीं है, उसमें उत्कृष्ट उनके अपने, ये तो पद्धति है आनत कल्प के समान है। उसकी बात नहीं यहाँ पर, छह प्रकार की वृद्धि हानि है कि नहीं इतना ही यहाँ विशेष, उसमें अल्प बहुत्व नहीं लगा रहे, उसमें अल्प बहुत्व नहीं लगा रहे, उनके अपने योग्य संकलेश विशुद्धि चलेगी कि नहीं चलेगी?
सत्संग प्रतिष्ठ चलेगी,
यहाँ भी स्वामित्व में देख रहे हैं कि ओग और आदेश ओग से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के सब पद किसके होते हैं? अभी तो मिथ्या दृष्टि के होगे ना, अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सम्यक्व के सब पद किसके होते हैं? अन्यतर सम्यक दृष्टि के होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व के सब पद किसके होते हैं? अन्यतर सम्यक मिथ्या दृष्टि के होते हैं। बारह कषाय और नौ नौ कषाय के सब पद किसके होते हैं? अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। यानी वहाँ तो अवक्तव्य भी होगा क्योंकि वो पलट कर आता है उस अपेक्षा से। यानी यहाँ स्वामित्व में कोई कहाँ किस पॉइंट पर होता है वैसा नहीं दिया, मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि है कि समय मिथ्या दृष्टि, इतना ही दिया आदेश से। नारकियों में मिथ्यात्व सोलह कषाय सात नौ कषाय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है, इतनी विशेषता है, इनमें नपुसक वेद का अवक्तव्य पद नहीं। तिर्यंचों में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि तीन वेदों का अवक्तव्य पद किसके होता है? अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होता है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, अपना अपना वेद जान लेना चाहिए। योनि नियम में स्त्री वेद का वक्तव्य पद नहीं है। पंचेंद्रिय तिरंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तकों में तथा नव अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों के सब पद किसके होते हैं, तो अन्यतर के होते हैं। वहां के सारे समय दृष्टि है, यहाँ के सारे मिथ्या दृष्टि है, तो किसी के भी होते। मनुष्य त्रिक में ओग के समान बन गए, इतनी विशेषता है, अपना अपना वेद जान लेना चाहिए। मनुष्य नियम में स्त्री वेद का वक्तव्य पद किसके होता है, अन्यतर समय दृष्टि के होता है, यानी उपशम श्रेणी से उतरने। देवों में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है, इनमें नपुसक वेद नहीं है तथा स्त्री वेद और पुरुष वेद का अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सौधर्म ईशान कल्प तक के देवों में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार सनत कुमार से लेकर नवग्रहविक तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें स्त्री वेद नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। एक ख्याल में यहाँ तो केवल समय दृष्टि के है कि मिथ्या दृष्टि के इतनी चर्चा। अब कालानुगम, यह कालानुगम का अर्थ क्या लेना, कोई विशिष्ट वृद्धि लगातार होती रहेगी तो एक जीव की अपेक्षा कितने का, यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात है ना, ये वृद्धि का नंबर 3 है। तो निर्देश 2 प्रकार का है, ओहर आदेश, ओग से सब प्रकृतियों की 5 वृद्धि और 5 हानियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कितना का अंतर्मुट और बाकी 5 वृद्धि हानि के आवली का असंख्यात भाग, लगातार वही की वही की वही वृद्धि होती रहे तो। अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 7-8 समय है।
तो यह आवली का असंख्यात में बात तक 5 वृद्धियां नहीं होगी, पीछे नियम से अनंत गुण वृद्धियां हानि हो जाएगी,
अन्य वृद्धि होगी,
अन्य वृद्धि तो अनंत गुण वृद्धि या अनंत गुण हानि होगी,
वो तो चलती रहती है ना, वो तो हमने देखा तांतर्मूत अंतर्मूत में चलती रहती है। और अन्य वृद्धि हानि कोई भी हो सकती है ना, 5 में से आपस में से कोई हो सकती है।
हाँ, सो 5 वृद्धि या 5 हानि अवली का संख्या से भाग काल तक हो सकती है, किसमें से कोई भी है, और उसके पश्चात अनंत गुण वृद्धि या हानि हो जाएगी कि नहीं,
अनंत हो गया इसी कहाँ का,
अच्छा दूसरी कोई हो जाएगी पलट कर।
ये अंतर में आएगी बात। तो अलग पद्धति से बताया, उसमें नहीं घुसेंगे, पहले काल देख लेंगे। देखो अपना विषय चल रहा है, जो अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 7-8 समय है। ये 7-8 वाली बात हमने योगों में भी देखी थी, काल एवं मध्य रचना, यहाँ तो बात अनुभाग उदीर्णा की चल रही है। ये 3 नंबर का है वृद्धि, हमने ये बात देखी कि 5 वृद्धि और 5 हानियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, और अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल 7-8 समय है। देखो हमने देखा था उत्कृष्ट लगातार अनुभाग उदीर्णा होगी, वृद्धि नहीं उदीर्णा हो, तो 2 ही समय देखे थे, उत्कृष्ट की बात। अब बीच वाले जो कोई मिडिल वाले परिणाम या अनुभाग उदीर्ण होगी वो मैक्सिमम 7-8 समय तक हो सकते हैं। अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सब नारकी, सब तीरियंच, सब मनुष्य, सब देव जिन प्रकृतियों की उदीरणा करते हैं और उनके जो पद है उनका भंग उग के समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषार्थ 5 वृद्धियों और 5 हानियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण तथा अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से यहाँ सब प्रकृतियों की उक्त वृद्धियों और हानियों का उक्त काल कहा है। सभी प्रकृतियों सब प्रकृतियों के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल 7-8 समय बन जाने से यह उक्त प्रमाण है। इनके अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होने से उसे तत्प्रमाण बतलाया है। शेष कथन स्पष्ट ही है। हाँ, कुछ नया तो नहीं बताया। अब अंतरानुगम की वृद्धि नंबर
4।
अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ओघ और आदेश। ओग से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की 5 वृद्धि 5 हानि और अवस्थित पद का जघन्य अंतर काल एक समय है। यानी एक समय के अंतर से वापस उसी वृद्धि या हानि पर आ सकता है। और उत्कृष्ट अंतर काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का जघन्य अंतर काल एक समय है। मिथ्यात्व के बारे में है नहीं। और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 2-66 सागरोपम।
ये 5 वृद्धि और 5 हानि का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण बताए।
उत्कृष्ट अंतर।
हाँ, उत्कृष्ट अंतर। तो ये 5 वृद्धि में कोई भी एक वृद्धि लेना या एक हानि लेना,
पांचों ही। हाँ, पांचों ही के बारे में ये कथन लागू होगा। उसमें हर एक के बारे में ये कथन लागू होगा। यानी अनंत गुण वृद्धि और हानि हमेशा चलती रहती है। अनंत गुण वृद्धि हानि तो चलती रहती है। ये अन्य जो वृद्धि हानियां बताई है
वो कभी कभी होगी।
हाँ, किसी जीव को असंख्यात लोक प्रमाण काल तक होगी नहीं। और ये मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी के लिए जो अंतरकाल बताया है
समय तो रहने का।
जघन्य अंतरकाल एक समय, एक समय के अंतर से मिथ्यात्व में रहते हुए हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 2-66 क्योंकि वो समय दृष्टि ही रहा। अवक्तव्य का भंग भुजगार के समान है। मिथ्यात्व में अवक्तव्य का समय कितना होगा कम से कम? हाँ लक्ष्मी, मिथ्यात्व के अवक्तव्य का कम से कम अंतर, अभी काल की बात नहीं, अंतर। हाँ अंतर में आप क्या कहते हैं? एक समय कैसे होगा? अवक्तव्य में नहीं था और होने लगा। हाँ
अंतर में
किसी हानि वृद्धि का बात नहीं, अवक्तव्य की बात है। तो अंतर्मूर्त होगा, अंतर्मूर्त के लिए समय दृष्टि रहा। उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? हाँ उपार्ध पुद्गल, क्योंकि मिथ्या दृष्टि रहा कंटिन्यूअस,
अंत में
तो उसका अवक्तव्य तो नहीं होगा। अनंतानुबंधी में
अंतर्मूर्त अंतर नहीं,
उत्कृष्ट अंतर।
उत्कृष्ट अंतर जो अधिक 2-66
वो मिथ्या दृष्टि में रहते हुए उसका तो अंतर नहीं घटित होगा।
अवक्तव्य होगा मिथ्या दृष्टि,
अवक्तव्य होते रहेगा क्योंकि क्रोध मान माया लोग
साधिक में साधिक।
हाँ, तो उसको समय दृष्टि रखना। ऊपर जो बताया था वो अनंत गुण वृद्धि हानि का बताया था, वही अंतर अनंतानुबंधी के अवक्तव्य में भी होगा। परंतु मिथ्यात्व के अवक्तव्य के लिए
उपार्ध पुत्र
उसको कंटिन्यूअस मिथ्या तो नहीं रखना है उपार्ध पुत्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित पद का जघन यंत्र काल एक समय है। अवक्तव्य पद का जघन यंत्र काल अंतर मुहूर्त है। मिथ्या तो मिलाकर फिर आएगा विशिष्ट वृद्धि हानि का
छह वृद्धि और छह हानि
अवक्तव्य की बात नहीं चल रही। अवक्तव्य में तो अंतर मुहूर्त होगा ही और सबका उत्कृष्ट अंतर काल उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी शुरू में एक बार समय दृष्टि हुआ लास्ट में एक बार यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो
नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वर्जनं नमो लोहे सभ्यसावणं नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वर्जनं नमो लोहे सभ्यसावणं नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वर्जनं नमो लोहे सभ्यसावणं नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वर्जनं नमो लोहे